14 June 1978. चर्चा चल रही है अब ये क्लास है मंत्रयोग की। चय एक धातु आती है वर्ब, उससे नाउन बनता है। तो गुप्त रूप से जिससे वार्तालाप की जाए, जिसके द्वारा, उसको मंत्र कहते हैं। तो इन मंत्रों के द्वारा परमात्मा से गुप्त रूप से हमारी बातें होती हैं। अब पता नहीं वो सुनता भी है या हम अपनी मनोती आती बना कर बैठ जाते हैं उसके बारे में, अनेक बातें घर मारते भगवान के विषय में। अगर वो सुनता होता तो इतने वर्ष साधना करते रहते हैं, उसके नाम का जाप करते रहते हैं, तो कभी तो सुनाई होती। तो मालूम होता उसके कान ही नहीं है सुनने के लिए। हमारे की तरह कहीं शक्ल सूरत वाला होता तो शायद सुन भी लेता। सुनता है। अब जैसे ये आकाश है, आकाश में तुम्हारे शब्द यहाँ से बुलाते हो तो दूर भी आवाज चली जाती है, यहाँ से बुलाओ तो शायद एक मील पर भी पार चली जाएगी, गैर पड़ा दी। तो ऐसे कान हो तो सुनाई। तो आकाश में भी शब्द गमन करता है। तो परमात्मा चेतन सत्ता है, उसमें भी शब्द गमन करता होगा। परंतु हम तो अगर उसको हम न्यायाधीश कहते हैं तो जैसा हम कर्म करते हैं वैसा वो फल दे देता होगा। अब मैं तो इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि कर्म का फल भी स्वयं ही मिल जाता है जब हम उसके लिए कार्य क्षेत्र में कर्म को लाते हैं। तो जब कार्य क्षेत्र में कर्म को ले आएंगे तब हमें उसका फल मिलेगा। जैसे हमने फसल बोनी है तो मेहनत करेंगे, फसल बोएंगे, उसका फल हमको मिल जाएगा। तो अब कर्म का फल कर्म के साथ नहीं होता, हमारा पुरुषार्थ उसको सिद्ध कर देता है। तो इसलिए परमात्मा पर ही सारा निर्भर नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ अपने आप पुरुषार्थ के द्वारा कर्म कर करके भी फल की प्राप्ति करनी चाहिए। क्योंकि कर्म के साथ में फल निहित होता, जुड़ा हुआ होता, उसमें छिपा हुआ होता है। जब वो कार्य क्षेत्र में आता है तब वो फल को अपने प्रदान कर देता है। ताकि अगर मंत्र पर ही मन लगा रहे तो एक प्रकार से और तरफ से वृत्तियों का निरोध होता है और संस्कार वहां नहीं आने चाहिए। केवल मंत्र में ही मन लगा रहना चाहिए। मैं एक बार कुछ वर्ष लगा कर, कोई 3.25 साल के करीब लगा करके 1.25 करोड़ मंत्र का जाप किया था गायत्री का। तो उस जाप के टाइम में मुझे ऐसी कुछ स्वाभाविक सिद्धि सी हो गई थी, संकल्प सिद्धि जिसको कहते हैं, कि तुम्हारा ये काम हो जाएगा, हो जाएगा, तुम्हें ये चीज मिल जाएगी, मिल जाएगी। ऐसे कुछ संकल्प जो कहता था वो सत्य हो जाया करते थे। तो मंत्र जाप से संकल्प सिद्धि तो हो जाती है और मन की एकाग्रता भी हो जाती है मंत्र पर कहीं उससे आत्म साक्षात्कार की बात बन जाए वो विषय कुछ अलग है। क्योंकि उसका तो क्रम ये होगा, उपनिषद में कहा है इंद्रियेभ्यः परा हि अर्था, अर्थेभ्यश्च परम मना, मनस्तु परा बुद्धि, बुद्धेर आत्मा महान परा, महतात् तो परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषा परा, सा काष्ठा सा परागति। इंद्रियेभ्यः परा हि अर्था, ये जो हमारी इंद्रिय नाक कान आदि, इनसे आगे हैं अर्थ, वया इंद्रियों इनके जो विषय है उन विषयों से हटाकर उनसे रोक करके इंद्रियों के स्वरूप को समझे। ये इंद्रिय क्या है, कौन सा इनका स्थान है, ये तो बाहर की आंख है परंतु रूप अंदर से देखने की जो बात पैदा होती है वो कौन सा स्थान है जहाँ की इन इंद्रियों का नाक का कान का ब्रेन के साथ में संबंध है। तो कौन कौन सी नाड़ियों का संबंध है, क्या और भी कोई सूक्ष्म इंद्रिय इस हमारे मस्तिष्क के अंदर वर्तमान है, तो पहले तो इंद्रियों का ज्ञान होना चाहिए और फिर उनके विषयों का, वह किस विषय के साथ, जैसे नेत्र रूप के साथ ही संबंध करता है, नासिका गंध के साथ ही संबंध करती है, इनके विषयों का भी, क्यों ये सोई करती है, नेत्र गंध को क्यों नहीं सुंघा देती, तो इस प्रकार का इनका, इनके स्वरूप का और इनके विषयों का ध्यान होना, और अर्थे भ्यस्य परमना, और फिर मन का साक्षात्कार होना चाहिए कि मन कैसे इनको विषयों के साथ नियोजित करता है। अगर मन का संबंध इनके साथ ना हो तो आंख देखते हुए भी नहीं देखा करती और कान सुनते हुए भी नहीं सुना करती, तो उस मन का भी ज्ञान होना चाहिए। मनसा तु पराबुद्धि, और मन के बाद में बुद्धि का साक्षात्कार होना चाहिए, इस मस्तिष्क के अंदर बुद्धि का स्थान कौन सा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसके कर्म और व्यापार कैसे है। मनस्तु पराबुद्धि बुद्धेर आत्मा महान परा, तो बुद्धि से परे महान है, महान क्या, महतत्व, महतत्व से बुद्धि की उत्पत्ति हुई है, महतत्व से वह इसकी उत्पत्ति हुई है। महता तु परम अव्यक्तम, और महत से परे अव्यक्त प्रकृति है, और प्रकृति से परे महान पुरुष है। महता तो अव्यक्त पुरुषा परा, वह उस प्रकृति से भी परे, प्रकृति के साक्षात्कार होने पर वह उस पुरुष आत्मा का साक्षात्कार होता है। सा काष्ठा सा परागति, वो ही इस प्रकार क्रम से विज्ञान की गति होती है। तो ये क्रम है वह आत्मा के ब्रह्म के साक्षात्कार का। अगर मैं सारा जीवन ही मंत्र रटता रहूंगा तो ये तो ज्ञान नहीं होगा। चाहे हजार जन्म धारण करके भी मंत्र किए तो वाणी है रटती रहेगी थी। तो इसलिए जो हम जानना चाहते हैं उनके लिए ध्यान के द्वारा प्रयत्न होना चाहिए कि कैसे इनका हम साक्षात्कार करें, कौन कौन से इनके साधन है, कैसे हम मन के पास पहुंचे, कैसे मन की गतिविधि को समझे, कैसे बुद्धि का साक्षात्कार करें, उनके कौन से उपाय हैं, आत्मा का को हम किस अवस्था में कैसे देखें। तो ये क्रम पूर्वक विज्ञान का क्रम है। तो जब तक इस प्रकार ध्यान और समाधि के द्वारा नहीं जाना जाएगा, तुम हजार साल भी मंत्र जपते रहो कुछ नहीं करेगा। क्या करना है, जब आप अंतर ध्यान होगे तो यहाँ एक छोटा सा इस चक्षुओं के यहाँ पृष्ठ भाग में एक छोटा सा बाल सूर्य सा चमकता हुआ आपके सामने आएगा, उसको अपने ध्यान का विषय बनाना, फिर उसके पृष्ठ भाग में नीले से वर्ण का, श्वेत से वर्ण का, वो भी जैसे छोटा बाल चंद्रमा हो गोल, उसके आकार की उससे भी किरणें निकलती हुई नीले से श्वेत वर्ण की पृष्ठ भाग में आएगी, फिर और पीले से कुछ रक्त से वर्ण का पीलिमा को लिए, पहले पीले वर्ण से बिंद वर्ण का, सुनहरी से वर्ण का, फिर जाकर के एक और बाल सूर्य की तरह बुद्धि का मंडल आएगा। पहला नेत्र का मंडल होगा, दूसरा मन का मंडल होगा, तीसरा बुद्धि का मंडल होगा। बुद्धि के मंडल के पास उसके टॉप पर तुम एक प्रकार से आत्मा को भी सूर्य के अश्वेत कलर के समान ही समझ लो, एक और इस प्रकार की अव्यक्त सी चेतन सत्ता उसके पृष्ठ भाग में होगी, जैसे वो भी पहले बाल सूर्य से चमकती हुई तद्रूप सी बनी हुई वो चेतन सत्ता पृष्ठ भाग में आपको देखने में आएगी। अगर ऐसे आज आपकी बुद्धि चल जाए तो पहुंच जाओगे शायद मंदिर में।